السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، برادران اسلام، غالباً گزشتہ تفریح کے سلسلے میں، سیر و تفریح اور نزہت اور تنزہ کے سلسلے میں کچھ باتیں گوش گزار کی جا رہی تھی. زندگی کا یہ بھی ایک موضوع ہوتا ہے، اپنے اوقات گزاری کے لیے، وقت کاٹنے کے لیے، جی لگانے کے لیے آدمی کو مشغولیت چاہیے، دل بہلتا نہیں. جن کاموں میں آدمی رہتا ہے ان کاموں سے بور بھی ہو جاتا ہے. ایک ہی انداز کا کام کرتے کرتے آدمی کی طبیعت زچ ہو جاتی ہے، چڑچڑاپن آ جاتا ہے. اسلام دین فطرت ہے. دین فطرت کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ وہ انسانی مزاج کی رعایت کرتا ہے، اور انسانی مزاج کے ہر پہلو کی رعایت کرتا ہے. تو یقیناً اس میں بھی اسلامی تعلیمات پائی جاتی ہیں، اسلامی رہبری پائی جاتی ہے. پھر ایک ہوتا ہے کسی زندگی کے پہلو کی رعایت کرنا، اور ایک ہوتی ہے اس میں شفقت، اس میں نفع نقصان کے پہلو کے ساتھ رعایت کرنا. جیسے بچوں کے ساتھ ماں باپ کی شفقت ہوتی ہے، بچوں کا بھی جی کھیلنے کو چاہتا ہے، بچوں کا بھی جی تفریح کو چاہتا ہے، لیکن ماں باپ اپنی فہم کے اعتبار سے ان کے ساتھ شفقت کا معاملہ کرتے ہیں. جو چیز بچوں کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے ویسی چیزوں میں ان کو کھیل کود میں نہیں لگاتے. جتنی ان کی بساط میں ہوتا ہے، جتنی ان کی فہم ہوتی ہے، جیسی فہم ویسا فیصلہ. اللہ تبارک و تعالی بندوں پر بہت زیادہ شفیق ہے، بہت زیادہ مہربان ہے، اور اللہ کے سامنے بندوں کی جو زندگی اور اس کی تفصیلات ہیں، اس اعتبار سے ان کی شفقت کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ دنیا میں ان کو ایسے کام کی اجازت دی جائے جس میں ان کا آخرت کا نقصان نہ ہو اور دنیا کا بھی بھلا ہو جائے. نفس انسانی کی خصوصیت میرے دوستو عجیب ہے، وہ یہ کہ جی بہلانے کے لیے جس چیز کو آپ متعین کر کے جی بہلانا شروع کر دیں گے، جی بہل جائے گا. النفس کالطفل ان ارضعته ارتضع وان فطنته انفطم. نفس بچے کی طرح سے ہوتا ہے، صوفیہ فرماتے ہیں نفس بچے کی طرح سے ہوتا ہے، اگر آپ دودھ پلاتے رہیں گے تو وہ دودھ پیتا ہی رہے گا، اور اگر آپ دودھ چھوڑا کے اس کو کھانا کھلانا شروع کر دیں گے تو کھانا کھانا شروع کر دے گا. وَإِن فَطَنْتَهُ إِن فَطَن. اسی لیے شریعت مطہرہ نے بعض مرتبہ مادی چیزوں سے دل بہلانے کے اسباب بنائے، اور بعض مرتبہ روحانی چیزوں سے دل بہلانے کے اسباب بنائے. روحانیت سے بھی دل بہلتا ہے، بلکہ صوفیہ کا کہنا یہ ہے کہ روحانیت والی لائن میں اگر دل بہلنا شروع ہو جائے تو پھر مادیت والی کسی بھی لائن میں دل بہلنا مشکل ہو جاتا ہے. اس میں اتنا زیادہ دل بہلاوے کا سامان ہے، اور جی جو ہے اتنا زیادہ اس سے متاثر ہوتا ہے. جیسے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر ان کی تربیت یافتہ حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین، آپ کی صحبت سے، آپ کے فیض سے، آپ کی تربیت سے ان کی عجیب و تربیت ہو گئی تھی، ان کا مزاج عجیب ہو گیا تھا. حضرات صحابہ کی خصوصیت یہ تھی کہ وہ فنا فی الرسول تھے صلی اللہ علیہ وسلم. ان کی چاہت کیا ہے؟ وہی ہے ان کے رسول کی چاہت. ان کی محبوب چیز کیا ہے؟ وہی جو ان کے حبیب کی محبوب چیز ہے، جسے وہ محبت کرتے ہیں. ان کی جو پسندیدہ مشغولیت ہے وہی ان کی مشغولیت ہے. ان کو کس چیز سے کرائیے تو نفرت ہے؟ ان کو اس چیز سے کراہیت و نفرت ہے جس سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کراہیت و نفرت ہے. جن چیزوں سے دل بہلتا ہے आप हैरत करेंगे कि मैं बाद ऐसी चीजों का जिक्र करूंगा कि बोलेंगे कि यार इससे कहां दिल बहलता होगा। नहीं, दिल बहलता है। एक चीज है जिससे दिल बहलता है, वो कुरान पाक की तिलावत है। और इतना ज्यादा इससे दिल बहलता है कि अगर किसी को कुरान पाक की तिलावत की लज्जत मिल गई, हलावत मिल गई, तो दुनिया की किसी भी चीज में आदमी इतनी लज्जत महसूस नहीं करता। اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلبي۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے ہیں اور سکھاتے ہیں امت کو کہ یا اللہ قرآن پاک کو میرے دل کی بہار بنا دیجئے۔ دل کی بہار بن جاتا ہے قرآن پاک، بالخصوص اس ملک میں جن لوگوں کے پاس میں جاب نہیں ہوتا یا جن کی عمریں زیادہ ہو جاتی ہیں، ان کے لیے تو بڑا عجیب وقت ہوتا ہے، موقع ہوتا ہے وقت کاٹنا۔ وقت کاٹے سے کٹتا نہیں، وقت ان کو کاٹتا رہتا ہر وقت۔ اور ابھی آپ دیکھیں گے بڑے بڑے عمر رسیدہ لوگوں کو، عمر رسیدہ خواتین کو، کہ اسپرنگ کے زمانے میں باغیچوں میں، پھولوں میں، اجنا والا ہریالی کاٹنے میں، پودے لگانے میں اپنا ٹائم پاس کرتے رہتے ہیں۔ ان سے پوچھے کیا مشغلے، کہ کوئی کام ہی نہیں ہے تو چلو سوچا کہ یہی کام کر لو، اس میں اپنا دل لگا دے رہتے ہیں، مشغولیت ہو جائے کچھ، دو تین دن، دو چار روز کی باہر، جیسے آہستہ آہستہ برف پڑنی شروع ہوتی ہے وہ پورا جو ہے نا چلا جاتا ہے، وہ مگر ٹائم تو کٹ جاتا ہے۔ اور ایک جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، قرآن پاک پڑھو، قرآن پاک کی تلاوت کرو، اس میں کیا مزہ آتا ہوگا؟ نہیں دوستو، اس میں بڑا مزہ ہے، بشرطے کہ تھوڑا سا اس کا مزہ لگ جائے بندے کو، ٹیسٹ بننا جس کو کہتے ہیں نا۔ اس ملک میں یہ چیز پہچاننا بہت آسان ہے کہ ٹیسٹ بلڈ نہیں ہوا ابھی۔ ایسی بہت سے امریکن کھانے جو یہاں کے بچے بڑے شوق سے کھاتے ہیں، ہم انڈین پاکستانیوں کو وہاں سے آنے کے بعد میں کھانا ٹائم لگتا ہے اس کا ٹیسٹ بلڈ کرنے، چلتا ہی نہیں۔ حلال کی بات ہو رہی، حرام کی تو ہو نہیں رہی، وہ ان کو کھائے نہیں جاتے، ہمارے کھانے یہاں کے بچوں کو نہیں کھائے جاتے۔ یہ کیا بنایا ہوا ہے تم لوگوں نے قورمہ، یہ کیا بنایا ہوا ہے تم لوگوں کو کوفتے، تم لوگوں کو بریانی چاہیے، وہ بچوں کو کھایا نہیں جاتا، یہاں کہ ان کو جنک فوڈ چاہیے، ایسی چیزیں چاہیے۔ ٹیسٹ کی بات ہوتی ہے تو ٹیسٹ بلڈ کرنے کو ٹائم تو ضرور لگتا ہے، جیسے دنیاوی چیزوں میں لگتا ہے ایسے ہی اخروی چیزوں میں بھی ہے، لیکن اگر لگ جائے میرے دوستو فائدہ ہی فائدہ ہے۔ جی لگنے کا ایک بہت بہترین ذریعہ جو ہے وہ قرآن پاک کی تلاوت ہے۔ نہ صرف جی لگنے کا یہ ذریعہ ہے، یہ غم غلط ہونے کا ذریعہ ہے۔ وجلاء همومي، یا اللہ قرآن پاک کو میرے غم اور رنج کے دور ہونے کا ذریعہ بنا دیجئے، غم غلط ہونے کا۔ آدمی جب کسی چیز سے زیادہ شغف رکھتا ہے تو غم میں اور فکر میں اس چیز کے ساتھ مشغولیت اختیار کر لیتا ہے۔ جو لوگ اسموکنگ کرنے کے عادی ہیں، جب ان کو کوئی زیادہ ٹینشن کی چیز ہوگی، کوئی پریشانی کا مسئلہ پیش آئے گا، تو اسموکنگ پیس ایک ڈبی پیتے تھے، اب چار چار ڈبی پی رہے ہیں۔ جن کو چائے کی عادت ہے وہ چائے پہ چائے، چونکہ غم کا مسئلہ آیا ہوا ہے، فکر کا مسئلہ آیا ہوا ہے۔ قرآن پاک کی خصوصیت یہ لکھی ہے کہ اس سے غم غلط ہوتا ہے، آدمی غم کو بھول جاتا ہے۔ آنکھوں کا نور ہے، آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ وذهاب همي ونور بصري، میرے آنکھوں کا نور اس کو بنا دی، میرے غم کی غلط ہونے کا اس کو ذریعہ بنا دی، میرے جی کے لگنے کا اس کو ذریعہ بنا دیجئے۔ ربیع قلبی کا مطلب یہ جی لگنے کا، دل کی بہار ہے یہ، دل کی مشغولیت اسی میں۔ ایک صحابی ہیں غالباً حضرت عبداللہ ابن عمر ہی ہیں، ان کی شادی ہوئی، اپنی دلہن کے پاس گئے، وہاں جا کے سوچا کہ اللہ پاک کا کتنا بڑا احسان ہے کہ شادی ہو گئی، ایک نعمت اللہ پاک نے عطا فرما دی، دو رکعت شکرانہ پڑھ لوں۔ انہوں نے شکرانے کے لیے، مختصر دو رکعت پڑھنے کے لیے نیت باندھی۔ اب خود ان کو نہیں پتا کیا ہوا، فجر کی اذان ہو گئی، بہت عجیب بات ہے یہ، بہت ہی عجیب بات ہے سوچا جائے تو۔ और ऐसी भी बात नहीं कि वो खुद ही कोई कतराना चाह रहे थे, वो खुद ही कोई बहाना बनाना चाह रहे थे। फजर के वक्त में उन्होंने माजरत की कि मुझसे माफी चाहता हूं, मेरे जहन में नहीं रही ये बात, माफी चाहता हूं कि मेरे जहन में नहीं रही। मैंने कुरान पाक जो पढ़ना शुरू किया तो जिन आयतों को, जो आयतें मेरी जुबान पर आई जिनका मैंने इंतखाब किया, उसमें जन्नत का जिक्र था, तो फिर मैं उसमें खो गया और पढ़ता ही गया, क्योंकि जब जिक्र है तो जरा तसलसल के साथ बहुत दूर तक है। कहेंगे मुझे ध्यान ही नहीं रहा इस बात का, और मुझे खुद ही ये ख्याल नहीं है कि इतनी देर हुई कैसे, इतनी देर तक मैंने नमाज पढ़ी मुझे याद नहीं। क्या मशगूलियत थी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, क्या उनका टेस्ट बिल्ड किया था, कैसा जौक बन गया था। ये भी एक जौक है, ये भी एक तफरी की चीज है मेरे दोस्त, तफरी की खातिर से नहीं, लेकिन ये मशगूलियत आदमी को हर तफरी से बेनियाज कर देती है। ये सबसे बेहतरीन तफरी है फारिग औकात में, कि आदमी कुरान पाक पढ़े, उसके मानी में गवासी करे, उसके अंदर जो गौर व फिक्र करने की चीजें हमसे मुताल्लिक हो सकती हैं उनमें गौर व फिक्र करे, हमसे मुताल्लिक हो सकती हैं जो, इसलिए अर्ज करता हूं कि कुछ चीजें हमसे मुताल्लिक गौर व फिक्र करने के लिए नहीं होती, हमारी इस्तेदाद में नहीं होती, जो है उसमें गौर व फिक्र आमतौर पर वाकयात में, अल्लाह ताला की वहदानियत में, रसूल की रिसालत में, आखिरत की फिक्रों में, आखिरत की किस्तों में गौर व फिक्र का मैदान है। मसाइल हमारे लिए जरा मुश्किल होती है गौर व फिक्र, जिसमें गौर व फिक्र कर सकता है बंदा उसमें गौर व फिक्र करना। अफला यतदब्बरून अल-कुरान अम अला कुलूबिन अक़फ़ालुहा, ये लोग कुरान पाक में तदब्बर नहीं करते क्या, इनके दिलों पर कुफल पड़े हुए हैं क्या। एक जगह पर हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साहब पड़ाव किया, या सरकार द्वारा में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त शरीक थे सफर में या नहीं, एक सफर था हजरत साहबा का, रात में सोते हुए हर तरफ से दुश्मन का खतरा रहता था। वो सफर इस जमाने के सफर की तरह नहीं थे, वो दीन के लिए मेहनत करने के सफर चल रहे थे, उसमें मुखालिफतों का तूफान बरपा था, हर वक्त जान की माल की लगी रहती थी, खतरा लगा रहता था। तो दो सहाबा को रात में जागने के लिए मुकर्रर कर दिया गया कि भाई हम लोग आराम करेंगे, आप दोनों निगरानी कर लेना, जागते रहना कि कहीं कोई बात ना हो जाए। दोनों जागते रहे, फिर दोनों ने आपस में मशवरा किया कि दोनों के जागने से क्या फायदा, एक आदमी सो जाए एक आदमी जागता रहे, जब उसको नींद आए तो वो आराम कर ले, पहले वाले को उठा दे, कह लेंगे हाँ ये भी ठीक है, जिम्मेदारी हम दोनों की है, मैं जागता रहूंगा, फिर थोड़ी देर के बाद मैं सो जाऊंगा, तुम आप जाग लेना। एक को सुला दिया, दूसरे जागते रहे। उन्होंने सोचा कि खाली जाग के क्या करूं, जागना ही तो है, नमाज पढ़ लो। वो नमाज उन्होंने शुरू कर दी, नमाज शुरू कर दी तो दुश्मन तो ताक में था ही था, उसने जो झांके देखा तो कुछ लोग आराम कर रहे हैं, दो हैं जो निगरानी के वास्ते लगते हैं मुकर्रर किए गए हैं, उसमें से भी एक सो रहा और एक हाथ बांधे हुए नमाज में मशगूल है। उसने ताक के जो तीर मारा वो आके इनको लग गया। थोड़ी देर के बाद उसने फिर दूसरा मारा, फिर दूसरा आके लग गया। जब खून ज्यादा बहने लगा और अंदाजा यह हुआ कि दुश्मन जो है कहीं जिस मकसद के लिए हमें निगरानी के लिए मुकर्रर किया गया था वही कहीं खामखा को दूसरों पर मुसीबत ना आ जाए, उन्होंने फौरन उठा दिया। तो उस सोने वाले बंदे ने कहा कि बंदे खुदा ये दो दो तीन तीन मार तुझे लगे हुए, पहले मार पर क्यों नहीं उठा दिया। तो कहने लगे इतना मजा आ रहा था कुरान शरीफ पढ़ने में, तबीयत ही नहीं चाह रही थी, इतना मजा आ रहा था कुरान शरीफ की तिलावत में कि तबीयत ही नहीं चाह रही थी और खून बहे जा रहा है। ऐसे जगहों पर बाद लोग मसले पेश किया करते हैं कि भाई वजू ही नहीं था उनका, नमाज ही टूट गई थी। ये मसलों की जगह नहीं होती, ये थोड़ी क्योंकि इनसे कह रहा है कि साहब तुम्हारी नमाज हुई क्या नहीं हुई, उनको भी पता है कि नमाज नहीं, जब कुरान शरीफ खून निकल गया था नमाज टूट गई, ठीक है टूट गई, जो तो उनको बाद में पता चला कि वो नमाज नहीं हुई जो पड़ी थी मैंने, उसको थोड़ी पता चल रहा था कोई। ये जगह मसलों की नहीं होती, बाहरी जगह जो है ना मसला मुताल्लिक तो रहता है लेकिन साहब मामले को मसले से बहस नहीं रहती, कहता बाद में जो होगा होगा। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पचना लगवाया, पचना कहते हैं इलाज के वास्ते खून निकलवाने को, और आपने इसको बेहतरीन इलाज करार दिया है कि फासिद खून जो है वो निकलवा दिया जाए। और पहले जमाने में खराब खून का हिस्सा पहचानने के माहिरीन हुआ करते थे, पता नहीं उनमें क्या महा, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको बेहतरीन इलाज बताया है। और जब आपने बेहतरीन इलाज बताया तो इसमें जान है कुछ, ऐसा नहीं हो सकता कि कुछ नहीं है और आपने बताया हो। खैर, खुद आपने पसीना लगवाया, उससे खून खींचा जाता है। पहले जमाने में और तो जराये सोर्सेस थे नहीं, इसके माहिरिन होते थे, वो सींग में सुराख, जिसमें सुराख डाल के वो सींग के ऊपर रखते थे, बकरे की सींग फला किसी भी चीज की सींग वगैरह लेके उसको किस अंदाज से बना लेते थे नहीं मालूम, फिर जब उसको खींचते थे तो उसमें खून आ जाता था, थोड़ा बहुत खून खींचने वाले को भी लग जाता था। इसी वजह से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पेशे की तारीफ नहीं फरमाई, मगर इलाज को बेहतरीन बताया। वो खून रखा हुआ था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, एक साहबी को कहा कि इसको एक जगह ले आके कहीं दफन करके आ जाओ, वो दीवार के पीछे गए, गड़गड़ गड़गड़ पूरा पी जाओ, सरकार का खून है। कहेंगे कर दिया काम, कहेंगे हाँ कहाँ, कहेंगे यहाँ। अरे अजीब आदमी हो। फिर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अब तुमको जहन्नम नहीं छुएगी, जिसके अंदर मेरा खून चला जाए उसको जहन्नम नहीं छू सकती। अब एतराज करने वाले कि वो तो नापाक होता है, उसके ऊपर इतनी बशारत कैसे मिल गई, वो जायज कैसे हो गया, हुजूर ने इजाजत कैसे देती, हुजूर ने इजाजत कब दी थी भाई, हुजूर ने दी थी इजाजत, एक बात हो गई वो, लेकिन हर चीज की अपनी खसूसियत है, मसले के एतबार से नहीं था वो मसला, लेकिन उन्होंने अपने पेट में डाल लिया और उनकी मोहब्बत की बात थी, वो अजमत की बात थी, उन्होंने सोचा कि नबी का खून है मैं इसको नहीं दफन कर सकता, मेरे हबीब का, मैंने पी लिया। खून तो खून है, साहबा ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पेशाब मुबारक भी पी लिया, क्योंकि वो भी मुबारक ही था। नबी के बोलो बराज नापाक नहीं होते। अब लोग जिनको समझ में नहीं आता, खुशके होते ना, खुशके बगैर मोहब्बत के जिनके पास इल्म होता है उनको खुशका कहते हैं, जाहिद खुश्क, खुश्क उलमा। हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह उनको असहाब किश्र बोलते हैं, असहाब किश्र का मतलब छिलके वाले, इनके पास गुदा नहीं होता शरीयत का, तो इनको बड़ा ये होता है कि साहब ये कैसा हो गया, ये कैसा पी लिया, पर वो मसला नहीं होता, वो जायज नहीं बताया उनको, वो सही नहीं था, मना ही, उनको काम दूसरा लगाया गया था, उनसे मोहब्बत में रहा नहीं गया, वो पी गए क्या कर सकते, बजायर देखने में गलत काम था लेकिन वो कितना अच्छा काम था अल्लाह को पूछो। जब अल्लाह के पास जाएगा बंदा नबी की मोहब्बत में ऐसा उसने किया है, पता नहीं उसके साथ क्या खास मामला, अल्लाह ही जानता है, वो बंदा ही जानता है जिसके साथ वो मामला होगा। तो यहां पे भी यही मसला है कि वो सहाबी को तीर लग गई, खून बह रहा था, मसले मुतालिक नहीं हो, मसला मुतालिक तो होता है लेकिन मसले क्वेश्चन रेज नहीं किए जाते ऐसे मसाइल में, पूछने की चीज नहीं होती, क्योंकि वो साहब मामला उस वक्त होश में नहीं है, मगलूबियत में है, गलबे हाल में है, उनको फिक्र ही नहीं थी इस बात की, वो कुरान पाक की तिलावत में थे। मैं ये कह रहा था कि देखो कुरान पाक में कितना मजा है, आखिर कोई बात है जो वो महसूस करते थे। मुसलमानों को अल्लाह तबारक व तआला ने इंजॉय करने के लिए भी मेरे दोस्तों दीन की लाइन से बहुत सी चीजें रखी हुई, ज्यादा वक्त कुरान पाक की तिलावत में, जिक्र करने में, अगर किसी आदमी को जिक्र की लज्जत, जिक्र की हलावत मिल जाए, उसकी उससे आप कहें कि जुबान जिक्र से रोक दो तो रोकना मुश्किल है उसके लिए, रोका नहीं जाता उससे। कितने लोग हैं जो सवाल करते हैं बुजुर्गों से, किताबों के अंदर उनके हालात हैं, किताब तहारत खाने में जुबान से जिक्र करना मना है और जुबान रुकती नहीं, क्या करना है, पकड़ के बैठे हैं, लेकिन दिल नहीं रुकता। फिर उलमा ने लिखा है कि दिल पे पाबंदी है भी नहीं, और दिल से तो जिक्र होना ही चाहिए, चाहे इस्तिंजा खाने में ही क्यों ना हो, दिल से जिक्र करने की ममानात नहीं, जुबान को हिलाने की ममानात है कि नापाकी की जगह है। अब वो पकड़े हुए बैठे, वो इतनी आदी हो गई है, हुजूर ने फरमाया कि तुम्हारी जुबान जो है वो जिक्र में ताजा रहे, ला यजाल लिसान का रतबम मिन ज़िक्रिल्लाह, गोया चौ तरफ से जिक्र जो है ना जुबान को लपता हुआ रहे हमेशा। दस्तखानों पे आजकल इसका बड़ा रिवाज है कि आलू हैं, या जिन लोगों को हरी मिर्च खाने का शौक है, या कुछ और अचार वगैरह की चीजें हैं, वो रख देते हैं बॉटल के अंदर, उसके अंदर सिरका है, वो सिरके में जो है वो चीज पड़ी हुई है, आलू पड़े हुए हैं, या हरी मिर्च पड़ी हुई है, गाजर पड़े हुए हैं उसमें डूबे हुए, तो जुबान को फरमाया गया कि ये ऐसे भिगो हुई है ना, जैसे ये चीज भिगोई हुई है, तुम्हारी जुबान अल्लाह के जिक्र में ऐसी डूबी हुई रहे। जाहिर है कि जिस आदमी को इसकी मश्क होगी, जो थोड़ा बहुत इसको किया होगा, इसकी हलावत उसको लगी होगी तो तहारत खाने में उसको मुश्किल तो पेश आएगी, सहाबा को मुश्किल पेश आती थी। बुजुर्गाने दीन को औलिया अल्लाह को इस्तिंजा में खामोश रहना मुश्किल था। हमें आम वक्त में 10-5 मिनट अल्लाह के जिक्र के लिए निकालना मुश्किल है। कभी तो थोड़ा वक्त अल्लाह के जिक्र के लिए निकाल लिया करोगे, हमसे नहीं, कहां से होता ही नहीं, फुर्सत ही नहीं। घास काटने को टाइम है, बर्फ साफ करने को टाइम है, कुत्ता टहलाने को टाइम है, कुत्ते बिल्ली को जो है ना गिजा देने को वक्त है, घंटों जो है ना वो मूवी उस पर क्या बोलते कंप्यूटर के ऊपर, टीवी के पर्दे के ऊपर बहुत सी चीजें, बहुत से प्रोग्राम देखते बैठने को टाइम है, बच्चों को गेम खेलने को टाइम है, बुड्ढों को गेम खेलने को टाइम है। आजकल तो गेम वेम का टेस्ट रहता हो गया है कि ना इसमें बच्चे हैं ना बड़े बड़े हैं। खवातीन को बात, खवातीन इस्लाही ताल्लुक के सिलसिले में कभी खतवत लिखती हैं, वो कहती हैं कि गेम खेलने की बड़ा तबीयत चाहती है, क्या मसरूफियत है, तो कह लें कि घंटे दो घंटे ढाई घंटे गेम खेलने में निकल जाते, और माशाल्लाह बच्चे भी बड़े हैं, तो अजीब जौक अजब बन गए हैं कि गेम खेल खेल के दिल बहलाया जाता है इस जमाने में। बड़ी उम्र के लोग, पहले तो कभी गेम खेलने का कोई, इस किस्म की चीजें खेलने का बड़े लोगों में कोई कॉन्सेप्ट नहीं हुआ करता। खैर, जी बहलाने के लिए बहुत सी मशगूलियतें आदमी करता है। मैं यही कहना चाह रहा था कि जी बहलाने का इंतजाम शरीयत मुतहरा ने जो किया है तो मादी चीजों में भी रखा है, जैसे मैंने गुज़िश्ता जिक्र किया था, सैर सियाहत को मना नहीं किया गया, टहलने को मना नहीं किया गया, सीनरी देखने को मना नहीं किया गया, आसार कदीमा को, तारीखी चीजों को देखने को मना नहीं किया गया है, अच्छे खाने को, अच्छे पहनने को, घूमने फिरने को, हवाखोरी को मना नहीं किया गया, सिर्फ उसमें शरीयत की कुछ हदूद हैं। उसके ही कुछ पहलू सुनाना चाह रहा था, यह दूसरा पहलू निकल गया। ये भी बहरहाल एक अहम चीज है कि शरीयत मुतहरा में आमाल की लाइन से एक आदमी को जौक पैदा करने की तरकीब दी गई है। अगर जौक बनाना चाहोगे तो बन जाएगा इसका भी, यही मैं कह रहा था कि टेस्ट पर है ये चीजें। अगर जौक बनाना चाहे बंदा तो आराम से जौक बन सकता है। कुरान पाक की तिलावत का जौक, अल्लाह के जिक्र का जौक, दुरूद शरीफ की कसरत का जौक, इस्तिगफार का जौक, खैर खैरात का जौक, अल्लाह के रास्ते में घूमने फिरने का जौक, जमातों में जाने का जौक, बुजुर्गों की खिदमत में और उनकी सोहबत में पड़े रहने का जौक, पढ़ने पढ़ाने का जौक, बच्चों को तालीम देना, दीन के कामों में हिस्सा लेने का मुख्तलिफ एतबारात से एक जौक होता है, ये भी उसमें भी आदमी का टाइम कट जाता है, लेकिन उसके साथ साथ आखिरत बन जाती है, अल्लाह राजी हो जाते हैं, अमल का सवाब बढ़ता चला जाता है। कुछ ऐसी चीजों में मशगूलियत हो जाती है कि बंदा मर भी जाता है वो काम जारी रहता है, उसका सवाब अल्लाह पाक अता फरमाते रहते हैं। हफ्ता आला शानू अवकात को सही गुजारने वाला हमें बना दे। जिन लोगों ने सुन्नतें नहीं पढ़ी हैं वो लोग सुन्नतें पढ़ ली हैं।